नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं।
जी
पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित आद्य शक्ति गायत्री की समर्थ साधना।
हाँ, ये पुस्तक क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला का हिस्सा है। 1988 से 90 के बीच लिखी गई।
जी, और पूज्य गुरुदेव ने तो इसे अपना ज्ञान शरीर कहा था।
बिल्कुल, और वंदनीय माताजी से कहा भी था कि ये ज्ञान, ये प्रकाश जन जन तक पहुंचे।
तो हमारा प्रयास भी यही है आज।
जी बिल्कुल, इस पुस्तक के जरिए गायत्री महामंत्र का जो तत्व ज्ञान है, जो साधना का असली मर्म है, उसको समझना,
जैसा पूज्य गुरुदेव ने बताया है।
हाँ, क्योंकि ये सिर्फ मतलब मंत्र जपने तक की बात नहीं है, ये तो जीवन को पूरी तरह से बदलने का, बेहतर बनाने का एक दर्शन है।
उनका संदेश साफ था, ये क्रांतिधर्मी साहित्य सब तक पहुंचे।
जी
तो चलिए शुरू करते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है,
हाँ,
ये भारतीय संस्कृति का केंद्र है, उसका सार।
सबसे छोटा धर्मशास्त्र कह सकते हैं इसको।
हाँ,
और ये सोचना भी अहम है कि जो प्राचीन भारत की स्वर्गादिपी गरियसी वाली स्थिति थी, वो इसी ज्ञान पर आधारित थी।
बिल्कुल।
क्यों?
ऐसा क्यों?
क्योंकि इसमें वेदों का निचोड़ है, एसेंस है।
अच्छा।
मूल रूप से देखें तो ये प्रार्थना है, ईश्वर से दिव्यता मांगना और प्रखर बुद्धि, जिसे पूज्य गुरुदेव ने सद्बुद्धि कहा।
और ये सिर्फ अपने लिए नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यही खास बात है। ये नह यानी हम सबके लिए, पूरे समाज के लिए, सबके उत्थान के लिए।
व्यक्ति से संस्थित, जी, इसे त्रिपदा गायत्री भी कहा गया है। ये तीन धाराएं क्या हैं, जरा समझाएंगे?
हाँ अवश्य। त्रिपदा मतलब तीन पैर या तीन चरण। ये व्यक्तित्व का पूरा विकास करती हैं। पहली धारा है सविता का वर्ण।
सविता यानी सूर्य।
हाँ, सूर्य जैसा तेज वैसी ऊर्जा, जीवन में ओज शौर्य साहस लाना, आलस्य डर को हटाना।
ठीक है, और दूसरी?
दूसरी धारा है दैवत्व का वर्ण, मतलब श्रेष्ठता दिव्यता शालीनता उदारता संयम। ये जो दैवीय गुण है उन्हें अपनाना, अपने स्वभाव में लाना। और तीसरी धारा जो बहुत महत्वपूर्ण लगती है, धियो योनः प्रचोदयात्।
हाँ, ये सबसे व्यापक है शायद। ये है सामूहिक सद्बुद्धि की प्रेरणा।
सिर्फ मेरी बुद्धि नहीं,
नहीं, हमारी बुद्धि,
सबकी बुद्धि अच्छे रास्ते पर चले, ये प्रार्थना है। छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर सबके भले की सोचना, लोक कल्याण।
तो ये तीनों ऊर्जा, दिव्यता और सामूहिक सद्बुद्धि,
हाँ, जब ये मिलती है ना जीवन में, तो व्यक्तित्व बदल जाता है। पूज्य गुरुदेव इसे आध्यात्मिक त्रिवेणी संगम कहते थे। फिर कायरता अनीति ये सब टिक नहीं पाते।
पूज्य गुरुदेव ने एक बात पे बहुत जोर दिया है कि गायत्री साधना सिर्फ मंत्र दोहराना नहीं है।
बिल्कुल,
ये जीवन साधना है।
हाँ,
उन्होंने यज्ञोपवीत का भी उदाहरण दिया है शायद।
हाँ दिया है, यज्ञोपवीत के 9 धागे, उन्हें 9 सद्गुणों का प्रतीक बताया।
जैसे कुछ उदाहरण?
जैसे श्रमशीलता, ईमानदारी, बहादुरी, संयम, स्वच्छता, कई सारे।
अच्छा।
और संदेश ये है कि इन गुणों को जानना ही नहीं, जीवन में उतारना है, अपने व्यवहार में लाना है,
यही असली साधना है।
हाँ, और यहीं पर आत्मशोधन की बात आती है। अपने अंदर की कमियों को पहचानना, उन्हें दूर करना, लगातार प्रयास करना, तभी व्यक्तित्व उत्कृष्ट बनता है, और वैसा व्यक्ति ही साधना का फल पा सकता है।
मतलब जीवन को सुधारे बिना सिर्फ पूजा पाठ,
वो एकांगी रह जाता है, अक्सर उसका पूरा फल नहीं मिलता।
एक और बहुत बड़ी बात पूज्य गुरुदेव ने कही गायत्री की सार्वभौमिकता के बारे में।
हाँ, ये बहुत क्रांतिकारी विचार था उस समय
कि ये किसी एक वर्ग या लिंग के लिए नहीं है।
बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा कि मध्यकाल में जो गलत धारणाएं बन गई थी कि गायत्री सिर्फ ब्राह्मण या पुरुष ही कर सकते हैं, वो ठीक नहीं है।
तो ये सबके लिए है,
हर मनुष्य के लिए, पुरुष हो नारी हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ग हो, सबका अधिकार है। बल्कि उन्होंने तो नारी शक्ति के जागरण के लिए इसे विशेष जरूरी बताया।
ये तो समता का संदेश हुआ।
जी, सार्वभौमिक अध्यात्म।
अच्छा, गायत्री साधना के साथ यज्ञ का भी जिक्र आता है पुस्तक में, इनका क्या संबंध है?
देखिए, गायत्री और यज्ञ एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री।
कैसे?
अगर गायत्री ज्ञान है, सिद्धांत है, तो यज्ञ उसका कर्म है, प्रैक्टिकल है। गायत्री सोचना है तो यज्ञ करना है।
तो यज्ञ सिर्फ हवन करना नहीं है?
नहीं, उसका अर्थ बहुत गहरा है। देव पूजन, संगतीकरण और दान, मतलब अच्छी शक्तियों का आदर करना, मिलकर अच्छे काम करना और समाज के लिए अपना समय, अपना ज्ञान, अपना पुरुषार्थ, अपना धन, उसका कुछ हिस्सा देना।
अग्नि की तरह तेजस्वी बनकर परमार्थ में लगना।
हाँ, वही यज्ञ जीवन है। और दीप यज्ञ जैसे सरल प्रयोग जो हैं, वो इसी भावना को आम लोगों तक ले जाने के लिए हैं।
पूज्य गुरुदेव ने आज के समय को युग संधि की वेला कहा है। इसका क्या मतलब है?
युग संधि मतलब दो युगों का मिलन, एक संक्रमण काल। पूज्य गुरुदेव का मानना था कि हम ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं,
ऐसा दौर
जहां पुरानी गलत चीजें, मान्यताएं, कुरीतियां वो खत्म हो रही हैं और एक नए अच्छे उज्जवल भविष्य का, सत्युगी भविष्य का निर्माण हो रहा है।
और इस बदलाव के लिए क्या जरूरी है?
इसके लिए सामूहिक साधना और विचार क्रांति, सोच में बदलाव। पूज्य गुरुदेव ने इसी पर जोर दिया।
गायत्री उपासना से?
हाँ, उनका मानना था कि अगर जनमानस में, लोगों में सद्बुद्धि आ जाए तो दुनिया की सारी समस्याओं का हल निकल सकता है।
इसीलिए वो बड़े लक्ष्य रखते थे, जैसे 1 करोड़ साधक, 1 लाख दीप यज्ञ।
जी हाँ, ताकि एक पॉजिटिव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बने, एक सामूहिक सकारात्मक चेतना जागे।
तो अगर हम सार देखें, आद्य शक्ति गायत्री की समर्थ साधना हमें बताती है कि गायत्री सिर्फ मंत्र नहीं है।
नहीं,
ये आत्म सुधार है, अच्छे गुणों को अपनाना है, यज्ञ जीवन यानी दूसरों के लिए जीना है,
और सामूहिक सद्बुद्धि जगाना है।
और ये सब के लिए है, बिना किसी भेदभाव के।
बिल्कुल। और पूज्य गुरुदेव का ये काम हमें सोचने पर मजबूर करता है।
किस बारे में?
कि अगर गायत्री का ये मूल तत्व, मतलब सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना और जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास, अगर इसे हम सब अपना लें,
व्यक्ति भी, समाज भी,
तो
आज जो इतनी सारी चुनौतियां हैं, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, दुनिया भर की,
जी,
उनका समाधान कहां तक संभव हो सकता है?
एक गहरा सवाल है।
जी।
और प्रकाशक भी यही चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव का ये ज्ञान शरीर, ये पुस्तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे,
ताकि ये सद्बुद्धि का प्रकाश फैले।
हाँ, नव जागरण का प्रकाश सब तरफ फैले।